तो उन्होंने हाथ दुआ के लिए उठाए हजरत सईद बिन जुबैर ने और कहा, या इलाही मेरे बाद हुज्जाज को किसी पे मुसल्लत ना करना। तो इनके शहादत को अभी 15 दिन भी नहीं गुजरे थे कि हुज्जाज को इतना शदीद बुखार हुआ, कभी बेहोश होता था कभी होश में आता था, जब आंख खुलती थी तो चीख मार के कहता था सईद बिन जुबैर ने मेरा गला पकड़ा हुआ है। सईद बिन जुबैर मुझसे पूछता है कि बताओ तूने मुझे क्यों कत्ल किया। फिर वो बच्चों की तरह रोने लगता, कहता भला सईद बिन जुबैर से मेरा क्या वास्ता, मुझे क्या हो गया, दुनिया वाला सईद को मुझसे पीछे हटाओ, इससे मुझे बचा लो, मैं मारा गया, मैं लूटा गया, मैं तबाह बर्बाद हो गया। और जब ये मर गया और इसको दफना दिया गया, तो एक शख्स ने उसको ख्वाब में देखा और उसे पूछा है, हुज्जाज जिनको तूने कत्ल किया इनका बदला तुझसे कैसे लिया गया। उसने कहा, हर कत्ल के बदले अल्लाह ताला ने मुझे एक बार कत्ल किया, लेकिन सईद बिन जुबैर के बदले मुझे 70 बार कत्ल किया गया। सुभान अल्लाह, बहुत सारा इसने खून खराबा किया था। तो ये मुझे इससे ही याद आ गई कि उन्होंने भी कहा था, फअइना मा तुवल्लू फथम्मा वजहुल्लाह, जिधर को भी अपना रुख कर लोगे उधर अल्लाह को पाओगे। और देखिए हम मशरिक और मगरिब में हम फर्क करते हैं ना, हम सोचते हैं हम वेस्ट में रहते हैं तो वेस्ट के तकाजे और हैं और ईस्ट में रहने वाले लोगों के और हैं, और हम अब वेस्ट में आ गए हैं तो अब हमें तो ये करना पड़ेगा और ये करना चाहिए। हालांकि मशरिक और मगरिब तो अल्लाह ही का है। जिस माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख खोली थी, उससे ज्यादा तारीख माहौल कौन सा हो सकता था कि बच्चा बच्चा शराब पीता था, बस बुत परस्ती थी, जिना था, सूद था। मगर देखें कैसे वो माहौल बदल गया। तो ये ना सोचें कि आप वेस्ट में आ गए हैं तो यहाँ पे कोई और अल्लाह है और नऊजु बिल्ला ईस्ट में कोई और है, यहाँ भी वही अल्लाह है और जहां से आप आए वहां पे भी वही अल्लाह था। जैसे अभी मैं वापस अपने मुल्क गई हुई थी तो वहां पे सुभान अल्लाह मुझे याद आया, किसी ने मुझे कहा कि ये जो आप, बड़ी हैरत से उन्होंने कहा, ये जो आपका हाल हुलिया है कि ये यहीं के लिए पाकिस्तान के लिए, या आप वहां पे अमेरिका में भी इसी हुलिये में रहती हैं। उसको कहा कि मशरक और मगरब तो सब अल्लाह ही का है, लिल्लाहिल मशरक वल मगरब। हम क्यों ये सोचते हैं कि मशरक और मगरब और यहाँ पे हम आके पता नहीं क्या हो, कुछ और ही, यानी दीन भी अपना छोड़ा, अपना सब, अपनी अखलाकियात, अपनी शरीयत सब छोड़ दी इसलिए कि हम वेस्ट में आ गए, तो ये यहाँ पे कोई और अल्लाह है क्या? हर डायरेक्शन उसकी है, हर जगह उसी की है। तो ये ना सोचें कि मैं मगरिब में आ गई हूं तो खुद को बदल लूं, ये सोचें कि रब तो वही है ना, वही मशरिक में भी था और वही मगरिब में भी है, वही हर जगह है और वो बहुत वुसत वाला है और वो अलीम है। वुसत उसके इल्म में भी वुसत है, उसकी नजर में भी वुसत है, और वो जानता है जो भी तुम कर रहे हो, इल्म वाला है। एक दुआ नोट कर लीजिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी दुआ है, और यहाँ पे आया ना, लहुम फिद दुनिया खिज़्युन वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरी कुल्लिहा, ए अल्लाह तू हमारे सारे कामों का अंजाम अच्छा कर देना, वा अजिरना मिन खिज़्य दुनिया व अज़ाबिल आखिरा, और ए अल्लाह हमें दुनिया की रुसवाई से भी बचाना और आखरत के अजाब से भी बचाना। ये प्यारी दुआ ना, कि जितने भी हमारे काम है अल्लाह इनका अंजाम अच्छा हो, जिस चीज का अंजाम अच्छा हो जाए ना वो अच्छा ही है, और दुनिया की और आखरत की दुनिया की रुसवाई और आखरत के अजाब से बचाने के लिए भी ये दुआ है। तो अल्लाह ताला वुसत वाला और अलीम है, यानी जहां पे भी तुम सजदा करोगे उसको पहुंच जाएगा, वो वुसत वाला है और अलीम भी है, जिधर भी करोगे उसको इल्म है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, वकालु तखज़ल्लाहु वलदा, और उन्होंने इतनी बुरी बात की इन अहले किताब ने भी और मुशरिकी ने मक्का भी, कालू में सारे ही लोग आ गए जिन्होंने भी अल्लाह ताला की अस्तग़फिरुल्लाह औलाद ठहराई, क्योंकि ईसाइयों को तो आपको पता ही है कि वो क्या कहते हैं। यहूद में से कुछ ऐसे थे जो कहते थे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह वो अल्लाह के बेटे हैं, مشرکین مکہ وہ کہتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ میں سب کیا ڈینائی کرنا آ گیا، سبحانہ وہ تو پاک ہے، اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہو، کیونکہ اولاد کے وجود سے اس کا تسلسل چلتا ہے نا، انسان کی اولاد اسی کی کنٹینیویشن ہے نا، لیکن جو خود لا فانی ہے، جس جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، جو حی اور قیوم ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت؟ یہ تو ہم جیسوں کو ہے، ہم ختم ہو جائیں گے چلو ہماری نسل چلے گی آگے، ہمارے بچے آگے، ان کے بچے، ہمارا نام چلے گا، لیکن جس کو کبھی کوئی فنا نہیں ہے، اس کے لیے تم اولاد ٹھہراتے ہو. تو یہ دیکھیں سبحانہ، جب بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات آئے نا جو اس کی شان کے خلاف ہو، تو پھر کہنا کیا چاہیے؟ سبحانہ، وہ تو پاک ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کے لیے جو آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی اس کی ملکیت ہے. دیکھیں جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں، سب کی ملکیت اللہ کے پاس ہے، سب یعنی اس کے غلام ہیں، سب اس کی مخلوق ہیں، اور مخلوق تھوڑی اولاد ہو سکتی ہے، ملکیت تو اولاد نہیں نا ہو سکتی، یہ تو ساری اس کی ملکیت ہے، اولاد کہاں سے پھر آئے گی اس کی؟ اولاد کیا انسان کی ملکیت ہوتی ہے بتائیں؟ نہیں نا، اولاد جوان ہو جاتی ہے، ماں باپ کو آنکھیں دکھانے لگتی ہے، سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے آپ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، تو اولاد ملکیت نہیں ہوتی. تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں، کوئی ایک بھی آپ ایگزمپشن نہیں کر سکتے اس میں کہ ایکسپٹ دس، ہر چیز لہو ما فی السماوات، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، سب ہی اللہ کی مخلوق ہے، سب کا مالک وہ ہے، پھر ان میں سے اس کی اولاد کوئی بن کیسے سکتی ہے؟ کل لہو قانتون، اور سارے کے سارے اس کے تابع فرمان ہیں. اولاد بھی فرما بردار کہاں ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی اولاد فرما بردار نکل آئے، اکثریت تو روتے ہی نظر آتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کی تو ساری مخلوق اس کی فرما بردار ہے، اس میں اولاد کہاں سے آ سکتی ہے پھر؟ پر قانت اطاعت گزار سے ڈیفرنٹ ہے، قانت وہ ہے جو آل دا ٹائم بس حکم کا منتظر رہے، کہ کس وقت حکم آئے میں فوراً حکم مانوں، ہر وقت تیار رہے، عارضی بھی اس میں ہو. تو قانت ایسا ہے، ایک ہے اطاعت گزار، ٹھیک ہے آپ نے کچھ کہا، اس نے کہا اچھا چلو میں کرتی ہوں، اٹھا اور اس نے کر دیا. ایک ہے اوکے آئی ول ڈو اٹ رائٹ ناؤ، اس وہ اسی وقت تیار، چاقو چوبند ہے، اسی وقت دوڑ پڑا کام کرنے کے لیے، وہ تو پہلے انتظار میں تھا کہ کب مجھے حکم آئے تو میں کروں، وہ ہوتا ہے قانت. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے، سبحان اللہ، اطاعت گزار نہیں آیا، قانت آیا، کہ یہ منتظر ہیں کدھر، اللہ کا حکم آئے ہم کرنے کو تیار ہیں، ہم اسی وقت اتنے اوبیڈینٹ ہیں، اسی وقت کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے. سبحان اللہ، اولاد کہاں ایسی ہوتی ہے؟ اس کی تو ساری مخلوق ایسے ہے. بدیع السماوات والارض، پھر وہ نئے سرے سے، میں نے جیسے آپ کو بتایا نا ترجمے میں، کہ ایک ہوتا ہے کہ مثلا ہے کہ کسی نے کسی مٹیریل سے کوئی چیز بنا دی، آپ نے پیپر پکڑا اور اس کا جہاز بنا دیا، آپ نے آپ کے پاس مٹیریل تھا اسے گھر بنا لیا. لیکن اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بدیع ہے، یعنی کوئی چیز موجود نہیں تھی جس سے اس نے بناتا، کوئی مٹیریل نہیں تھا، کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی اس کے پاس ماڈل نہیں تھا، کوئی پہلے سے تصویر نہیں تھی، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے سماوات والارض، آسمانوں کا اور زمین کا. اور وہ تو ایسا ہے کہ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف وہ اتنا اس کو کہنا ہوتا ہے، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، وہ ایسا صاحب اقتدار ہے، وہ ایسا غالب ہے، وہ ایسا طاقتور ہے، تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ جب انسان نے دعا مانگنی ہو نا، تو دعا میں بھی یہ کہا کریں کہ اے اللہ تو میری اس دعا پہ بھی کن فرما دے، تو نے تو کن نہیں کہنا نا اللہ، تو میری اس دعا پہ بھی کن کہہ دے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، जो इल्म नहीं रखते, कौन नहीं इल्म रखते? फिर दोबारा उम्मी लोगों की बात आ गई है, मुशरिकीन ने मक्का की बात आ गई है कि वो क्या कहते थे, क्यों नहीं हमारे पास क्यों नहीं कोई ऐसी अल्लाह ताला की तरफ से निशानी आती, या हमसे क्यों नहीं अल्लाह ताला बात करता? ये नाउज़ु बिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी बातें करते थे कि इनके अंदर ऐसे क्या, जिसको हम अपने मुहावरे में बोलते ना सुरखाब के पर लगे, इनमें कौन सी ऐसी खास बात है कि इनके पास वही आती है, इनसे अल्लाह ताला ने बात की है, हमारे पास क्यों नहीं आ जाती? हम इतने बड़े सरदार हैं, इतने मालदार हैं, क्योंकि उनके पास मयार क्या था, क्राइटेरिया क्या था, उनका क्राइटेरिया क्या है, उनका क्राइटेरिया ही ये है, माल सरदारियां बड़ाइयां, यही उन्होंने अपनी बनाई नहीं थी कि हम बहुत साहिबे हैसियत है ये चीज। तो वो कहते थे हमारे पास इतना कुछ है, हमारे से क्यों नहीं बात होती? कज़ालिका कौल अल्लदीना मिन कबलिहिम, इसी तरह कहा था उन लोगों ने जो इनसे पहले आए थे। क्या कहा था? उन्होंने भी यही बातें कही थी। वो लोग भी ऐसे ही कहते थे हमारे पास क्यों नहीं कोई मौजज़ा आ जाता, हमारे पास क्यों नहीं कोई निशानी आ जाती, हमसे क्यों नहीं अल्लाह ताला बात कर लेता। आपने पहले पढ़ा है ना कि इन्होंने क्या कहा था बनी इसराइल ने, उन्होंने भी तो यही कहा था ना, हमारे से क्यों नहीं अल्लाह बात करता। तशाबहत कुलूबुहुम कद बय्यन अल्लायात लिकौमी यूकिनून, अल्लाह ताला ने फरमाया इनकी बातें ही मिलती जुलती नहीं है, इनके दिल भी मिलते जुलते हैं। पहली कौमें जो कौमें आल, कौमें समूद, बनी इसराइल, ये सब जो गुजरे हैं ना, इन्होंने ऐसी बातें की थी, इनकी बातें भी सेम है, इनके दिल भी सेम है। कैसे? इसलिए कि जो पीछे से बहकाने वाला है वो तो सेम ही है ना शैतान, वक्त गुजर गया, टाइम जोन डिफरेंट है, टाइम टाइम लाइन डिफरेंट है, लेकिन काम और बातें वही हैं। आज भी जैसे कई लोग हैं वो कहते हैं कि हम इस्लाम लाएं, लेकिन अल्लाह ताला हमें कोई साइन दिखाए, पहले हमारे पास कोई साइन आए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कद बय्यना लायाती, हमने तो आयात बिल्कुल क्लियर कर दी है, बिल्कुल तुम्हारे सामने वाजे कर दिए, अभी तुम्हें किसी और आयत की जरूरत है, कोई निशानी की जरूरत है, हमने ये आयात बयान की तो है तुम्हारे सामने। जो यकीन रखने वाला हो ना उसके लिए यही काफी है, उसके लिए तो हमने वाजे कर दी है। अब एक एक इनमें से चाहता है हमारे पास एक एक के पास कोई फरिश्ता आए, एक एक के पास कोई आए वही लेकर, एक एक के पास किताब आए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। जिसने यकीन करना है ये अल्लाह की आयतें हैं, क्लियर है सामने, खुली हुई है। तो आपको भी अगर कभी कोई कहे कि हम किसी साइन का वेट कर रहे हैं, कुछ अल्लाह हमें दिखाए बस, तो ऐसे नहीं होता कि इंडिविजुअली हर एक के पास अलग अलग साइन आने लगे। तो वो तो वो भी कहते थे हमारे पास ही कोई निशानी आ जाए, आज भी वही डिमांड है। ए नबी इन्ना अरसलना कबिल हक बशीरा व नदीरा, ए नबी बेशक हमने आपको हक के साथ भेजा है, आप तो बशारत देने वाले हैं और डराने वाले हैं। बशारत किसको देंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जो ईमान वाले हैं, और डरावे किन के लिए हैं? जो नहीं मानते। और ए नबी वला तुसअलु अन असहाबिल जहीम, ए नबी आपसे सवाल नहीं किया जाएगा जहन्नम वालों के बारे में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दारोगा नहीं है कि आपको लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़े कि हाय ये आ जाएं इस तरफ, इनको जरूरी आना पड़ेगा। नहीं, आप अगर कोई नहीं मानता तो आपसे क़यामत के दिन ये नहीं सवाल होगा कि हमने आपको भेजा था इतने लोग फिर भी जहन्नम में कैसे चले गए? नहीं। और ये बात हर दाई दीन को अपने सामने रखनी चाहिए, समझ आई? ये बात हमें सबको समझनी चाहिए, जो भी आगे लोगों को बात बताए वो ये जान ले कि मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को मैंने जहन्नुम से अब निजात दिला के रहना है। नहीं, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ बता देना है, पहुंचा देना है, फिर कोई माने या नहीं माने ये उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पूछा जाएगा और ना ही किसी और से पूछा जाएगा कि ये लोग जहन्नुम में क्यों गए हैं। वलन तरदा आनकल यहूदू वलन नसारा, और हर गिज नहीं राजी होंगे आपसे यहूदी और ना ही ईसाई। अब ये देखे ना, ये बात यहाँ पे आ गई, ये बात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम जैसे पहले भी जिक्र आया, वो ये सोचते थे कि ये लोग क्यों नहीं मानते, ये लोग तो किताब वाले हैं, इनको तो मान लेना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये नहीं मानेंगे कि इनका प्रॉब्लम कुछ और है। ये आपसे खुश होंगे ही नहीं, राजी होंगे ही नहीं, ना यहूदी और ना नसरानी। कब तक नहीं राजी होंगे? हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक कि आप इनके तरीके की को फॉलो ना करें। आप सोचते हैं कि ये इसलिए नहीं कन्विंस होते कि पता नहीं हम इनको इनके पास एक एक के पास आयत नहीं आ रही, या इसके पास ऐसे हो रहा है, या ये है मसला। नहीं, असल में मसला कुछ भी नहीं है, इन्होंने मानना ही नहीं, इन्होंने राजी होना ही नहीं है। इसलिए कि ये चाहते हैं कि आप इनके तरीके पे आ जाएं, इनको राजी करने के लिए आपको अपना दीन छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सौदा नहीं करते, वो कभी आपसे राजी नहीं होंगे, और अगर ये सौदा कर लेते हैं तो अल्लाह आपसे कभी राजी नहीं होगा। देखिए ना, क्या ये कल के लिए ही थी आयतें या आज के लिए भी हैं? क्या ऐसा नहीं लगता कि ये आयत आज के लिए नाजिल हुई है? इसलिए कि ये आज मुसलमानों का रवैया है। आज मुसलमान हर वक्त इस कोशिश में है कि हम, चाहे हमें अपने दीन के अहकाम को तोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम ऐसे कुछ काम अपना लें इनके, कुछ ऐसी कुछ चीजें कर लें, हम अपने अंदर चेंज ले आए, हम अपने दीन की चीजों को छोड़ दें, ताकि ये हमें रिजिड ना समझें, हमारा सॉफ्ट इमेज हो, हम मॉडरेट कहलाएं, हम फंडामेंटलिस्ट ना कहलाएं, ये हमें कबूल कर लें, किसी तरह एक्सेप्ट कर लें, हमसे खुश हो जाएं बस। लेकिन वो कभी भी नहीं खुश होंगे। हमारे मुल्कों में तो ये दौड़ ज्यादा ही है कि किसी तरह, अभी मुझे एक अरब मुल्क में भी जाने का इत्तेफाक हुआ, तो यही देख के दुख हुआ बहुत ज्यादा कि हमारे मुसलमान ऐसी कोशिशों में हैं, इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, इतना इस चीज के लिए उन्होंने अपने आप को समझने डेडिकेट कर दिया कि किसी तरह इन लोगों को खुश कर दिया जाए, ये हमसे खुश हो जाए बस। अब वो खुश करने के लिए उनको वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अपने दीन के अहकामात को तो तोड़ ही रहे हैं, ये हमसे खुश हो जाए और इस दौड़ में लगे हुए। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन्नहुदल्लाहि हुवल हुदा, बेशक हिदायत तो अल्लाह की है जो हिदायत है। इनको बता दें ये जो हिदायत, ये जो कुरान की शक्ल में आई है ना, इसको जो कबूल करेगा वो ही हिदायत पे हो गया। हम कहां से हिदायत लेते हैं, रहनुमाई कहां से लेते हैं, गाइडेंस कहां से लेते हैं, यहूदो नसारा से या अल्लाह ताला से? अल्लाह ने तो फरमाया कि अल्लाह की रहनुमाई सिर्फ रहनुमाई है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो उनसे रहनुमाई लेते लेते हम आज कहां तक पहुंच गए हैं, अपना दीन तक भुला दिया। आज दीन सिर्फ मस्जिद तक कन्फाइन होकर रह गया। अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया कि हिदायत सिर्फ अल्लाह की हिदायत है, इस कुरान की तरफ आओगे ये हिदायत है, इसी को हिदायत याफ्ता कहा जाएगा जो इसके ऊपर आएगा, बाकी कोई हिदायत हिदायत नहीं है। वो आपको जितने मर्जी बताएं तरीके, ये तरीके सही है, वो सही नहीं है। हिदायत ये है जो अल्लाह ने भेज दी, उसके मुकाबले में उनसे हिदायत मांगते, उनसे पूछते हैं कैसे चलना है। यही तो फिर हमारी बर्बादी के रीजन है ना। अल्लाह ताला ने फरमाया वला इन तबअत अहवा अहुम बादल लजी जाका मिनल इल्म मा लका मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर। देखिए कितनी साफ आयतें हैं। फिर जिसने भी, अलबत्ता अगर पैरवी की तुमने, अब यहां पे किसको कहा जा रहा है? सबसे पहले अव्वलीन मुखातिब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको कहा जा रहा है कि अगर ए नबी आपने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की ना, इसके बाद कि आपके पास इल्म आ गया, कौन सा इल्म आ गया था आपके पास? कुरान, हिदायत। अगर फिर भी आप इनकी ख्वाहिशात के पीछे गए कि चलो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जैसे ये कहते हैं तो कुछ इनकी मान लेते हैं, कुछ अपनी कर लेते हैं। देखें कई लोग बीच में होते हैं ना, बड़े मसलहत पसंद होते हैं, वो कहते हैं भाई अगर ये हमारी 70% मान रहे हैं, कोई बात नहीं, हमने इनकी 30% मान ली तो क्या फर्क पड़ गया? नहीं, आप नहीं कर सकते। ए नबी, अगर आपने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, इसके बाद कि आपके पास इल्म आ गया, अल्लाह से बचाने वाला फिर आपके लिए कोई नहीं होगा, ना कोई दोस्त होगा, ना कोई मददगार होगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करना तो नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह के हम सबको बता दिया गया कि देख लो, अल्लाह ताला ने अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमा दिया, जिनका तो सिर्फ मिशन ही यही था कि किसी तरह इनको इस दीन की तरफ लाया जाए, उनकी तो नीयत ये थी ना, हम तो किस लिए करते हैं, ये हमसे राजी हो जाए ताकि हम दुनिया में जरा ऐसे ना कहलाएं कि हम बहुत दीनी हैं और बड़े सख्त हैं। तो उनको तक अल्लाह ताला ने ये मना फरमा दिया कि आप इनकी ख्वाहिशात के पीछे, जो जैसा ये चाहते हैं वैसा आप नहीं इसको फॉलो कर सकते। ये तो अब बात बताएं कि हमारा फिर क्या रह गया कि हम इनकी ख्वाहिशात के पीछे चलें। इसके बाद कि अल्लाह ने हमें कुरान दे दिया, हिदायत की किताब दे दी है, क्यों इनकी ख्वाहिशात के पीछे चलने से क्यों रोका गया? उनकी ख्वाहिशात की बेस क्या है बताएं, क्या बेस है उनकी ख्वाहिशात की? क्या अल्लाह की किताब है? क्या दीन है? नहीं, बस ख्वाहिश नफ्स, जिधर उनका दिल चाहता है वो वैसे करने लगते हैं, या शैतान जो दिल में उनके डाल देता है, जैसे जी चाहा वैसे पहन लिया, जैसे जी चाहा वैसे जिंदगी गुजार ली, ना किसी हराम का पता ना हलाल का पता, कुछ यानी मन मानी जिंदगी गुजारना। सच्चाई का इल्म आपको हो गया है, अल्लाह की तरफ से हिदायत आ गई है, आपको पता चल गया है कि जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, तब भी अगर आपने इन्हीं को फॉलो किया तो इसका अंजाम फिर बहुत बुरा है, इसलिए कि फिर रब को छोड़ना पड़ेगा, फिर अल्लाह से बचाने वाला कोई ना दोस्त होगा ना मददगार, फिर इन्होंने तो नजर भी नहीं आना उस दिन। करके देख लो फिर इनके साथ दोस्तियां या इनकी ख्वाहिशात की पैरवियां, फिर तुम तन्हा रह जाओगे। और इनकी ख्वाहिश का और क्या है इनकी ख्वाहिश, कि आप उनके दीन पे आ जाएं, कुफर पे आ जाएं, जैसे पहले ये बात हुई थी ना शुरू आयत में, हमने ये सोच लिया कि चलो हम इन जैसे बन जाएंगे, हमसे खुश हो जाएंगे, इन जैसे बोल लें, इन जैसे पहन लें, क्रिसमस पे ट्री खड़ा कर लें, वैलेंटाइन मना लें, ये हमसे राजी हो जाएं किसी तरह, तो राजी तो फिर भी नहीं हुए वो आपसे। वाकई वो वाली हदीस पूरी आ गई ना कि गो के बिल में भी ये घुसेंगे तो हम इनके पीछे घुसेंगे। आज आपके स्कूलों में हालोवीन मनाई जाती है, आपके मुल्कों में, मुसलमान मुल्क में, वहां पे वैलेंटाइन डेज मनाए जाते हैं, वहां पे क्रिसमस और सेंटर्स और इनके बारे में बताया जाता है, वहां पे जगह जगह शराब खाने खुले में ताकि इन लोगों को कोई मुश्किल ना हो, और हम भी शराब पी के दिखाएं ताकि वे पता चले कि हमने तुमने देखो कोई फर्क थोड़ी है, हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत सख्त हैं, कोई देखो हम भी तुम्हारी तरह कहीं तो हैं, ये देखो हम भी शराब पीते हैं, और नाच गाना और बेहयाइयां और कपड़े उतार के फेंक देना, देखो हम भी तुम्हारे जैसे, देखो हमारा पहनना और ना तुम्हारा एक ही तो जैसा है। अल्लाह तो दोस्त नहीं है और ना मददगार है, ना दुनिया में ना आखरत में, और अल्लाह से बचाने वाला भी नहीं कोई मिलेगा फिर। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ان شاء الله تلاوت سنين دعوات کی
قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير